ओम शांति। मन जीते जगत जीत। जगत जीत कितने कितनी आत्माएं जगत जीत बनती हैं सारे विश्व में? सिर्फ 108 आत्माएं ही जगत जीत बनती हैं। अर्थात मन को जीतने वाले कितने ही बनते हैं? टोटल 108 ही बनते हैं। इसलिए 108 की विजयी माला बनी हुई है ना? तो और बाकी सब क्या करते हैं? बाकी सब भी नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार क्या बनते हैं? मन जीते जगत जीत। पर संपन्न और संपूर्ण सिर्फ 108 ही बनते हैं। और ये ज्ञान, बाबा का ज्ञान कैसा है? बड़ा ही गुह्य है, गोपनीय है और रहस्य युक्त है ना? गुह्य है, गोपनीय है और रहस्य युक्त है। तो इसके एक 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 महावाक्य में बहुत बहुत राज भरे हुए हैं। इसलिए एक एक पॉइंट को बार बार मनन करना, चिंतन करना, मंथन करना, सिमरण करना और फिर जाके हम स्मृति स्वरूप बनते हैं। अर्थात वो ज्ञान का पॉइंट तब जाके हमारे जीवन में समाता है। जैसे हम रोटी खाते हैं ना, चपाती खाते हैं, तो चपाती क्या, चपाती ऐसे पच जाती है क्या? चपाती को चबाते हैं, मुंह में डालते, तो मुंह में लेते थोड़ा डाल के फिर चबाते हैं, चबाने में जूस मिलता है, फिर आगे जाके पेट में जाके एसिड मिलता है, फिर और जूस मिलते हैं, फिर हाथों में जाता है, फिर हाथों में और ज्यादा जूस निकलते हैं, फिर लीवर से जूस निकलते हैं, फिर पेनक्रिया से जूस निकलते हैं, हाथों के जूस निकलते हैं, फिर पसते 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 आखिर में जाके वो खाना जब बिल्कुल ब्रेक हो जाता है, फाइन फाइन मॉलिक्यूल्स में ब्रेक होता है, उसके बाद वो खाना वहां खून में जाता है। ठीक है, खून में जाने के बाद किसके रूप में? ग्लूकोज के रूप में, प्रोटीन के रूप में और फैट के रूप में जाके फिर लीवर से सफाई होके फिर बॉडी में जाता है, तब खून बनता है उसका ना। तो मतलब कितना प्रोसेस लगता है ना। खाली ये नहीं कि आज हमने एक बात समझी, जैसे आज की मुरली में बाबा ने कहा ना, क्या कहा था आज की मुरली, याद है? क्या कहा था? तीन ओपिनियन लिखवाने के लिए बोला था ना बाबा ने, तीन ओपिनियन। कौन कौन सी ओपिनियन? ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, दूसरा गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, तीसरा पति पावनी गंगा नहीं है ना। बहुत अच्छे, तो तीन ओपिनियन। तो ये जो है, चलिए अभी मन जो है, मन क्या है? सबसे बड़ी शक्ति मन की है दुनिया में, कहते हैं सबसे बड़ी शक्ति दुनिया में कौन सी है? मन की है। अगर मन पे विजय हो जाए तो क्या होगा? दूसरे के मन पर नहीं, अपने मन पर अगर विजय हो जाए, अर्थात हमारे संकल्प, मन मन की, मन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मन में चार डायमेंशंस हैं, मन में चार डायमेंशंस हैं या चार उसके एस्पेक्ट हैं, चार पार्ट नहीं। पार्ट किसके होते हैं? बॉडी के, है ना? जो फिजिकल वस्तु है ना, उसके उसके पार्ट होते हैं। जो फिजिकल, मन फिजिकल है क्या? मन दिखाई देता है क्या? सामने दिखा सकते हैं, ऑपरेशन कर सकते हैं मन का? मन तो सामने दिखाई नहीं देता है ना। तो मन सूक्ष्म है, जैसे आत्मा सूक्ष्म है ना, आत्मा को हम देख नहीं सकते, तो मन को देख सकते हैं क्या? बुद्धि को भी देख नहीं सकते हैं, संस्कार को भी देख नहीं सकते हैं। तो मन, वैसे मन बुद्धि तीन, आत्मा की तीनों शक्तियां भी सूक्ष्म है, आत्मा से भी सूक्ष्म है मन, है ना? क्योंकि आत्मा सूक्ष्म है और मन उससे भी सूक्ष्म है, बुद्धि उससे भी सूक्ष्म है और संस्कार उससे भी सूक्ष्म है, राइट? तो इनको देख नहीं सकते हैं, तो इसके फिजिकल पार्ट तो हो ही नहीं सकते, है ना? हो सकते हैं, जिनको देख ही नहीं सकते उसके पार्ट कैसे बनाएंगे? बना सकते हैं, हाँ, उसकी डायमेंशंस अलग अलग हैं। तो मन की जो पहली डायमेंशंस है वो क्या है? इंग्लिश में कहते हैं टीम, टी फॉर थॉट्स। पहली डायमेंशन क्या है? विचार, संकल्प। मन को कहते सोचने की शक्ति, ये पहली डायमेंशन है। दूसरी जो डायमेंशन है या उसका एस्पेक्ट है वो है भावनाएं। क्या है दूसरा एस्पेक्ट? भावना, इमोशंस, इंग्लिश में कहते हैं इमोशंस, है ना? और तीसरा एस्पेक्ट क्या है? एटीट्यूड्स। एटीट्यूड्स माना वृत्ति, दृष्टिकोण, नजरिया। और चौथा डायमेंशन कौन सा है? स्मृति, यादें या मेमोरीज। ठीक है, तो चार डायमेंशंस हैं इसकी। कौन कौन सी? संकल्प, भावनाएं, वृत्ति और स्मृति। संकल्प जब हम बार बार करते ना, कोई चीज का संकल्प बार बार करते क्या होता है, उसमें भावना बैठ जाती है, तो भावना बन जाती है। इंटेंस थॉट्स लीड्स टू इमोशंस। जब कोई भी विचार हम बार बार और गहराई से करते हैं तो क्या होता है, वो भावना बन जाती है, ठीक है। और जब उस भावना को हम इंटेंस करते हैं अंदर गहराई से, उसको फील करते रहते हैं बार बार, तो क्या होता है, वो हमारा दृष्टिकोण वृत्ति बन जाती है। और जब हमारा एटीट्यूड बदल जाता है, वृत्ति बदल जाती है, तो क्या होता है, वो अंदर रिकॉर्ड हो जाता है, ठीक है। और रिकॉर्ड होने के बाद क्या होता है, फिर स्मृति बन गई ना, एक बार मेमोरी अंदर बन गई, फिर जो चीज वो वैसी चीज वापस सामने आएगी तो क्या होगा, फिर उस स्मृति से हमारी स्थिति बन जाती है। स्थिति माना रिकॉर्ड हो गया ना, सपोज मेरे को हो गया कि मैं तो बहुत बीमार हूं, मैं तो बहुत कमजोर सा हूं, है ना, मुझे तो हार्ट की बीमारी है, तो क्या होगा, मेरी स्थिति कैसी हो जाएगी, बोले ना, मुझे को कहे आप पहाड़ पे चढ़ जाओ सामने जाके, मैं तो कैसे चढ़ सकता हूं, मैं तो बीमार हूं, हार्ट पेशेंट हूं, झूठ भी को बता दे, पक्का कर दे उसको तुम हार्ट पेशेंट हो, हार्ट पेशेंट नहीं है वो, है ना, झूठ मूठ उसको बता दे तुम्हारा ईसीजी भी खराब है, तुम्हारा ये भी खराब है, तुम्हारी आर्टरीज ब्लॉक है, तो क्या होगा, उसकी स्थिति कैसे होगी। तो स्मृति के आधार पर स्थिति होती है, स्मृति से अंदर अंदर होती है, राइट। और वृत्ति जो फिर जैसी स्थिति होगी फिर वैसी वृत्ति, फिर वैसी दृष्टिकोण होगा, नजरिया होगा, ठीक है, नहीं वैसी वृत्ति होगी, क्योंकि फिर जैसे उसका एटीट्यूड कैसा हो जाएगा, अब मैं समझ में हार्ट पेशेंट हूं तो कैसा एटीट्यूड हो जाएगा मेरा, कैसा हो जाएगा, बस मैं तो इतना ही कर सकता हूँ, मैं तो पानी, मुझे बाल्टी उठाना मना है, मैं तो ऐसे नहीं कर सकता हूँ, पता नहीं दो दिन का मेहमान हूँ, दो साल का मेहमान हूँ, कब हार्ट अटैक आएगा, नहीं तुम्हारे बोलने में भी वैसा ही रहेगा, चाल भी ऐसी होगी, है ना, चाल देख के बता सकते हैं, हार्ट पेशेंट देख के नहीं बता सकते, नहीं बता सकते ना। तो ये जो है हमारा एटीट्यूड फिर ऐसा हो जाता है, वृत्ति जो है, वृत्ति से वायुमंडल बनता है, वृत्ति से क्या बनता है, स्मृति से स्थिति बनती है, और स्थिति से समर्थि आती है, करूं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, ये स्मृति से ही आता है, स्मृति स्थिति, स्थिति समर्थि, समर्थि माने एबिलिटी टू डू, और फिर जो है उसी स्मृति से क्या बनता है, वृत्ति बनती है, वृत्ति से क्या बनता है, वायुमंडल, आसपास का वातावरण वायुमंडल उससे बनता है। तो स्थिति का असर कहां होता है, हमारे अंदर, और वायुमंडल का असर कहां तक होता है, जहां होते हैं, जिस घर में, कमरे में, जिस ऑफिस में, या जिसमें जितनी जगह पर हमारा, जहां तक हमारा वातावरण का असर पड़ता है ना, तो वहां तक उसका असर पड़ता है ना, नहीं? जैसे मैं यहां पर आया तो मेरा जैसी वृत्ति होगी वह क्या होगा, मेरी वृत्ति सबके प्रति आत्मिक है तो क्या होगा, सारा वायुमंडल कैसा हो जाएगा, आत्मिक हो जाएगा। अगर मेरी वृत्ति में दैहिक है, बॉडी देखने की नेचर है, देह की तरह देखता हूं, तो क्या होगा, बॉडी कॉन्शियस वाला हो जाएगा, नहीं? जैसे जब शिव बाबा आते हैं, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में, दादी के तन में आते हैं, तो कैसा वातावरण, कैसा वायुमंडल हो जाता है, पूरा डायमंड हॉल का वातावरण, वायुमंडल कैसा हो जाता है, रूहानी हो जाता है ना, रूहानियत वाला हो जाता है ना, सब आत्मिक वायुमंडल हो जाता है, सब जैसे कोई भी बैठे हुए सबके सब एकदम उसमें खो जाते हैं ना, देह का भान खत्म, ये पता नहीं रहता कि 20,000 लोग बैठे हैं ना, आवाज भी नहीं आती है ना, तो ये जो है रूहानियत। तो बाबा की वृत्ति कैसी है, रूहानी वाली, वो आत्माओं को देखता है, वो देह को देखता नहीं है, तो ऐसे फिर सारा वातावरण वायुमंडल कैसा हो गया, रूहानियत का हो जाता है। फिर जैसी वृत्ति होती वैसी भावना होती है, ठीक है, तो वृत्ति के अनुसार भावना, भावना का असर कहां तक होता है, भावना का असर कहां तक होता है, बोलो, माताओं को स्पेशल पता होना चाहिए, हाँ, वायुमंडल सपोज एक माँ यहाँ बैठी है यहाँ पर, है ना, और उसका बच्चा बैठा है वहां पर अहमदाबाद में, हाँ, तो क्या होगा, भावना है बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो आपको क्या होगा, यहाँ से बैठे बैठे ना जो वाइब्रेशन जा रही है ना आपसे, उसके उसको आपकी याद आ रही है, आपको उसकी याद आ रही है ना, तो वाइब्रेशन जाते रहेंगे ना, कितने यहाँ बैठे बैठे, तो भावना टच करती है, तो भावना कितने किलोमीटर चली गई, है 200 किलोमीटर, 200-250 किलोमीटर चली गई ना, नहीं है जी, हाँ, और यहाँ से अमेरिका में बेटा बैठा हो तो क्या थी, कहाँ तक पहुंच जाएगी, है? तो भावना 20,000 किलोमीटर चलेगी ना, तो जहां भी मतलब दो व्यक्तियों के बीच में या दो ग्रुप्स ऑफ पीपल के बीच में, सपोज हम यहां बैठे बैठे बाबा को याद कर रहे हैं इस भावना से कि लंदन की आत्मा को कल्याण हो, वो भी बाबा का, उनको भी बाबा का परिचय मिल जाए, उनको भी ऐसा हो जाए, है ना। या मैं यूके में जा रहा हूं तो बाबा उनकी वहां की वहां मैं जा रहा हूं, आत्माओं को भी परिवर्तन हो जाए, है ना, सकाश दे रहे हैं, तो वहां की आत्माएं को फील होगा। पूरा समझ नहीं आएगा किंतु फील होगा। मेरे जाने के मैं पहले से उसका उस वायुमंडल का निर्माण करूंगा वहां पर भावनाओं से, वाइब्रेशन से, और फिर वहां जाने के बाद जब भाषण देंगे तो क्या होगा, वो परिवर्तन हो जाएंगे। ठीक है, तो भावनाओं का असर फिर वहां तक भी जाएगा, वाइब्रेशन है ना। तो भावनाएं जो है उससे वाइब्रेशन दूर कई दूर तक पहुंच सकते हैं। और संकल्प कहां तक पहुंचते हैं? संकल्प से सृष्टि बनती है, कहते हैं संकल्प से, भावना से वाइब्रेशन और संकल्प से सृष्टि बनती है। ठीक है, अर्थात संकल्पों का असर, जैसे भावना का असर तो वाइब्रेशन किसके पे पड़ता है, वो तो पड़ता है सिर्फ मनुष्य आत्मा का, मनुष्य आत्मा पर। संकल्पों का असर खाली मनुष्य आत्मा पर नहीं, आसपास पेड़ पौधे रखे हैं ना, जानवर हैं आसपास, है ना। और मान लीजिए आपके आसपास, आप जंगल में रहते हो, आसपास शेर है, भालू है, चीता है, सांप है ना, उस पर भी असर पड़ता है। ठीक है, देखा ना आपने, कोई जहां ऋषि मुनि रहते हैं, जंगल दिखाते ना, पहले जंगल में दिखाते थे, वहां पर अगर भालू भी आके पालतू कुत्ते के सामने समान आके बैठ जाएगा, शेर भी आके बैठ जाएगा। कभी सुना किसी ऋषि को भालू ने खा लिया हो, भालू ने काटा हो, शेर उसको खा गया हो, ऐसे कभी सुना आपने? सांप ने काट लिया, सांप काटने से मर गया हो, ऐसे सुना कभी? नहीं काटते उनको, क्योंकि उनको वो ना, उनके प्रति संकल्प, पॉजिटिव संकल्प रखते ना वो लोग, क्योंकि उनको हमें हमें किसको तंग नहीं कर, वो भी रहे हम भी रहे। तो जैसे संकल्प फिर हमारे होते हैं उससे सृष्टि बनती है, राइट। तो ऐसे ही हमारे अंदर भी, तो संकल्प से खाली और इवन जो है सारे जितने भी मनुष्य हैं धरती पर सब पे असर पड़ता है, 700 करोड़ आत्माओं पर असर पड़ता है, और जितने भी जंतु हैं, जानवर हैं, पंछी हैं, सब पे असर पड़ता है, और पेड़ पौधों पर असर पड़ता है ना, पांचों तत्वों पर असर पड़ता है, आकाश पर, अग्नि पर, वायु पर, जल पर, पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी पर असर पड़ता है, आसमान में जितने सूर्य चांद तारे हैं सब पर असर पड़ता है, और 10 गुना होकर हमको वापस आके अटैक करता है। तो मैंने अगर बुरा संकल्प किया तो क्या होगा, वो संकल्प जाएगा वहां से टकरा के वापस 10 गुना होकर मेरे को जाके अटैक करेगा ना, नुकसान किसका ज्यादा होगा? मेरा ही होगा, नहीं होगा। और अच्छा संकल्प करेंगे तो क्या होगा? जाएगा सबका भला करके, अच्छा करके वापस 10 गुना होकर मेरे को अच्छा बनाएगा। ठीक है, तो इसलिए कहते संकल्प करने से पहले भी संकल्प कर लो, सोच लो, सोचने से पहले भी सोच लो हम क्या सोच रहे हैं। तो ये हमें बहुत अटेंशन रखने की आवश्यकता, हम क्या सोच रहे हैं, क्योंकि सोच से ही दुनिया अच्छी और बुरी बनती है, नहीं ऐसा? संसार कैसे खराब बना, कलयुग की तमो प्रधान क्यों बन गया, किसने बनाया, है ना, हमारे ही विचारों ने, हमारे ही संकल्पों ने संसार को तमो प्रधान बना दिया, नहीं? क्यों? संकल्प से ही बोल बनते हैं, बोल और फिर संकल्प से कर्म होते हैं, संकल्प से संबंध संपर्क होते हैं, और संकल्प से ही स्वप्न आते हैं। ठीक है, अभी हम उसमें गहराई में जाएंगे कैसे संकल्पों से स्वप्न बनते हैं, कैसे सारा गहराई में जाएंगे। ठीक है, राइट। संकल्प कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार, कौन कौन से? और नेगेटिव, पॉजिटिव और व्यर्थ। संकल्प चार प्रकार के होते हैं, एक नेगेटिव, एक सबसे पहले तो पॉजिटिव। पॉजिटिव कौन से? जो बाबा की श्रीमत पे हम संकल्प करते हैं वो कैसे कहलाते हैं? पॉजिटिव संकल्प, समर्थ संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, तीन नाम कह सकते हैं, पॉजिटिव, समर्थ, श्रेष्ठ। तो तीन नाम इसको, एक ही बात के तीन नाम है। दूसरे संकल्प अगर माया की मत पर करते हैं, पांच विकारों के मत पर चलते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे नेगेटिव कहते हैं। जो पॉजिटिव संकल्प होते हैं उनमें क्या होता है? हमारी एनर्जी बढ़ती है, हमारी शक्ति बढ़ती है, ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है, और नेगेटिव संकल्प में क्या होता है? एनर्जी जलती है। क्या होती है? एनर्जी जलती है। जलती कैसे माना? ये जो पांच विकार है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, तो काम विकार में क्या होता है, काम विकार के विचार जो है बहुत फास्ट होते हैं ना, उसमें मेरी तो एनर्जी चल रही है, जिसके बारे में कर रहा हूं उसकी भी एनर्जी चलती है। मैं तो जल रहा हूं किंतु साथ में जिसके साथ में सोचा वो उसकी एनर्जी भी जल रही है। क्रोध में क्या होता है, क्रोध में जिसमें अपना मेरी एनर्जी तो जली, जिसके पर क्रोध किया उसका क्या हुआ, वो भी जला नहीं क्रोध से। लोभ से क्या होता है, मेरी एनर्जी तो जली किंतु किसका मैंने हिस्सा मार लिया उसकी भी एनर्जी जली। मोह में भी यही होता है, मेरी एनर्जी तो चल रही है किंतु जिसके प्रति मोह कर रहा हूं उसके भी तो विचार चल रहे हैं ना, वो भी उसकी भी एनर्जी चली। और अहंकार में क्या होता है, मैंने अहंकार किया, आप मेरे अहंकार से आपका अहंकार हर्ट हो गया तो मेरी जली आपकी भी जली नहीं, राइट। तो ये है नेगेटिव संकल्प, जिसमें आप भी जलते हो सामने वाला भी जलता है, ठीक है राइट, ये नेगेटिव है। और वैध संकल्प कौन से होते हैं, क्या क्यों कैसे कब, क्या ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, है ना, किसी बात में क्वेश्चन बेस करना, वो क्या है। जैसे इन्हीं पांच विकारों के दो दो बच्चे हैं, आपको शायद पहले पता हो, पता है सभी को, काम विकार के दो बच्चे कौन से हैं, आलस्य और अलबेलापन, आलस्य और अलबेलापन। तेज विचार चलते हैं ना तो दिमाग की एनर्जी खत्म हो जाती है, एनर्जी खत्म तो आलस्य आता है फिर, और अलबेलापन, छोड़ो कल कर लेंगे, अभी रहने दो, अभी तो सोए थे, अभी उठने का टाइम हो गया है ना, अभी थोड़ी देर सो लेते हैं, कौन दिखता है, बाबा को पता है अमृत वेला सारा संगम ही अमृत वेला है, मुरली घर में ही पढ़ लेंगे, टीवी पे आती है ना, घर में पढ़ लेंगे पिसोर में नहीं। तो ये जो है अलबेलापन, फिर ना खान पान में अलबेलापन, ये तो मशीन की बनी चीज है ना, चाय तो मशीन की बनी ना, कॉफी तो मशीन की बनी है, बिस्किट तो मशीन का बना है ना, नहीं खा लेते हैं, भूख लगी है क्या करें, मजबूरी में बाबा कहते खा लो, है ना, आइसक्रीम है ना मशीन से बनती है ना, तो खा लो क्या फर्क पड़ता है, नहीं नियमों में मर्यादाओं में अलबेलापन आ जाता है ना, ठीक है। तो ये इससे क्या, ये क्या होगा, ये जो आलस्य अलबेलापन के अंदर कैसे विचार चले, ये व्यर्थ विचार, इसमें किसका किसका नुकसान हो रहा है, सामने वाले का हो रहा है क्या, मशीन का नुकसान हो रहा है क्या, मेरा नुकसान हो रहा है, नहीं है। तो आलस्य अलबेलापन से मेरा अपना नुकसान होता है, मेरी एनर्जी जलती दूसरे की नहीं जलती। ऐसे क्रोध के दो बच्चे कौन से हैं, सिनिसिज्म और हॉस्टिलिटी। सिनिसिज्म माना दूसरे में दोष निकालने की आदत, ये ऐसा क्यों करता है, ये देखो कभी ठीक करता ही नहीं है, ये सुधर नहीं सकता है ना, ये सुधर नहीं सकती है ना। अब तुम्हें उसको उसको नहीं बोल रहे को, आप कुछ नहीं कह रहे, अपने अपने अंदर बोल रहे, किसका नुकसान हो रहा है, आपका बदलने की भावना रखना, किसी ने कुछ कर दिया आपको अच्छा लगा, आप उसके आपके मन में हॉस्टिलिटी आ गई, बदलने की भावना, जैसे होगा मैं इसको ठीक करूंगा, है ना, अंदर से सोच रहे हो, बाहर नहीं बोल रहे हो, अंदर से जहर भर गया आपके अंदर, किसका नुकसान हो रहा है। लोग के तो बच्चे शक और अनुमान, शक और अनुमान, आप शक कर रहे हो, इसने पता नहीं इसने किया हुआ, जरूर ऐसे ही किया हुआ, ये हमेशा ऐसा करता है, या जाया नहीं ना, जरूर ऐसे कर रहा होगा, कुछ अनुमान लगाना, नहीं ऐसे ना उसने मेरे को नीचे दिखाने के लिए ऐसा किया होगा, नहीं तो इसका किसका नुकसान हुआ, गिरा हुआ ना। तो व्यर्थ और चिंता के तो उसके मोह के कौन से बच्चे हैं, मोह के दो बच्चे हैं, चिंता और भय। जिसको मोह होता है ना उसको चिंता बहुत लगती है और भय भी बहुत लगता है, मेरा बच्चा अभी तक क्यों नहीं आया, किसी ने उठा तो नहीं लिया, है ना, रास्ते में एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, है ना, 1 बजे बस आती, 2 बजने वाले हैं, अभी तक क्यों नहीं आया, है नहीं कल से स्कूल ही नहीं भेजेंगे, कोई बात ना पढ़ा रहे कोई बात नहीं, घर में ही पढ़ लेगा, नहीं ऐसा होता। इससे कैसे विचार होंगे, व्यर्थ विचार, एनर्जी जलती है, क्या सिर्फ मेरी, दूसरे का कुछ नहीं होता। और ऐसे जल्दी अहंकार वाले के भी दो बच्चे होते हैं, क्या बच्चे होते हैं, जल्दीबाजी, हर बात में जल्दीबाजी, प्रेशर में रहते हैं, टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, जैसे मेरे को ऐसा ही होना चाहिए, कंपटीशन, कंपैरिजन, उसने तो ऐसा कर लिया, मैंने तो, मेरा तो पीछे रह गया, मेरे को वैसे चाहिए, मेरे पास वैसे होना चाहिए, आप अंदर से सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे प्रेशर में आ रहे हो, और ईर्ष्या, ईर्ष्या में कर रहा हूं अंदर अंदर, किसका नुकसान हो रहा है? तो ये जो काम, जो पांच विकार है ना, इनके दस बच्चे ना, इनसे इनसे वैध संकल्प पैदा होते हैं, ठीक है। तो इनकी वैध संकल्प की जड़ क्या है? ये पांच विकार। बाबा ने कहा ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, आजकल क्या सर्वव्यापी है? पांच विकार सर्वव्यापी है ना। किसके लिए बोल रहे हैं हम? अपने लिए, दूसरों के लिए? अपने लिए नहीं, कई दूसरों के लिए पर तो क्लास करा रहे हैं, दूसरों को क्लास करा रहे कि अपने आप करा रहे हैं? अपने आप को ना, नहीं अपने आप को। कई बार हम क्लास करा कर भूल जाते हैं कि मैं अपने लिए करा रहा हूं, दूसरों के लिए करा रहा हूं, अपने लिए। अपने आप को बहुत सूक्ष्म से चेक करना पड़ेगा ना कि मेरे अंदर तो आलस तो नहीं है, मेरे अंदर बिलापन तो नहीं। बाबा वैध संकल्प मुक्त बनो, लास्ट ईयर बाबा ने कई बार कहा था, उससे पिछले साल भी बहुत बार कहा, बाबा ने कहा वैध संकल्प मुक्त वर्ष मनाओ। पवित्रता माना क्या? ये तो बहुत मोटी पवित्रता है, मन वचन कर्म संबंध संपर्क सोपन तक तक पवित्रता रहना, ये तो मोटी पवित्रता बाबा ने कही ना। किंतु महीन पवित्रता क्या है? वैध संकल्प करना भी अपवित्रता है। ये ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहे, ऐसा ऐसा क्यों होता है? यज्ञ में मधुबन में भी ऐसा होता है क्या? ये ड्रामा के अंदर जो है वही तो हो रहा है, ड्रामा के बाहर हो रहा है क्या? तो भगवान का बनाया हुआ ड्रामा, उस पर आपको शक क्यों, उस पर आप क्वेश्चन क्यों रेज करते हैं? ये पवित्रता है कि नहीं? क्योंकि ड्रामा अनादि अविनाशी बना हुआ है, एक्यूरेट बना हुआ है ना? तो इसमें मैं कौन होता हूं क्वेश्चन उठाने वाला? तो पवित्रता है, अपवित्रता है, इतनी पवित्रता चाहिए, ठीक है, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये जो है हमको, ये चौथा चौथे प्रकार के संकल्प कौन से? साधारण संकल्प। साधारण संकल्प कौन से होते हैं? साधारण संकल्प माना जैसे रूटीन संकल्प, जैसे मैं खाना खा रहा हूं, खाना खाने का संकल्प, हॉस्पिटल जाने का संकल्प है ना, रूटीन साधारण, उसमें कोई नुकसान नहीं हो रहा है, नुकसान भी नहीं हो रहा, फायदा भी नहीं हो रहा है, मैं ब्रश कर लू, मैं नहा लू, है ना, क्लास में जा रहा हूं, तो अच्छा संकल्प है ना, रूटीन जो अब साधारण काम है ना, उसका संकल्प किंतु शिव बाबा की याद से हम क्या कर सकते हैं? शिव बाबा की याद से वैध संकल्प को जला सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, नेगेटिव संकल्प को जला सकते हैं, साधारण संकल्प को भी हम श्रेष्ठ संकल्प बना सकते हैं। बाबा की याद में हर काम, बाबा का काम कर रहा हूं, बाबा के लिए बाबा के हॉस्पिटल में जा रहा हूं, बाबा के बच्चों को देख रहा हूं, बाबा के बच्चों के लिए खाना बना रही हूं, है ना, बाबा के बच्चों के कपड़े साफ कर रहे हैं, बाबा का मतलब उसको भी साधारण को हम क्या बना सकते हैं? समर्थ, श्रेष्ठ बना सकते हैं। उसमें बाबा डाल दो ना तो क्या होगा? बाबा डाल दो तो क्या हो जाएगा? श्रेष्ठ, साधारण समर्थ हो जाएगा, और नेगेटिव क्या होगा? उड़ जाएगा। और जहां नेगेटिव, जब बाबा है वहां पर माया ठहर सकती है? माया ठहर नहीं सकती। और जहां बाबा है वहां पर वैध ठहर सकता है? ठहर नहीं सकता। तो ये जो है, हमें जो है अभी मन को, मन में भी तीन प्रकार है, मन भी तीन प्रकार है, कौन कौन से? एक तो हमारा कॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस माना इस जन्म का जो हमारे बस में है, हम जो सोच रहे हैं ना, मुझे पता है मैं क्या सोच रहा हूं, ये हमारा कॉन्शियस माइंड है, चेतन मन, चैतन्य मन। दूसरा है सब कॉन्शियस माइंड, वो मुझे पता नहीं है, है ना, सब कॉन्शियस माइंड, वो भी इस जन्म का है किंतु मेरे बस में नहीं है। और तीसरा जो मन है वो कौन सा है? वो अब अचेतन मन है, अचेतन मन जो अनकॉन्शियस माइंड, जो पिछले जन्मों का है, उसका भी मुझे पता नहीं, ठीक है, राइट। चलिए दो मिनट पापा को, जल्दी बच गए तो अच्छा, ठीक है। तो हमारे तीन तरह के माइंड है ना, अचेतन मन, अनकॉन्शियस, अवचेतन, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस। कॉन्शियस में भी पाप है, सबकॉन्शियस में भी पाप है, और अनकॉन्शियस में भी पाप है, तीनों ही माइंड में पाप भरे हुए हैं, ठीक है। सिर्फ 80% जो मन है हमारा अचेतन, अनकॉन्शियस है, पिछले जन्मों का है 80% मन, 15% मन हमारा सबकॉन्शियस है, अवचेतन है, और सिर्फ 5% मन कॉन्शियस है। इसलिए हम करना तो क्या करना चाहते हैं, आज हम सारा दिन बाबा की याद में रहेंगे, किंतु रात को देखो तो कितने मिनट बाबा की याद में रहे, है ना। चेतन मन संकल्प करते हैं कि बाबा आज हम ऐसा करके दिखाएंगे, आज हम सारा दिन गुस्सा नहीं करेंगे, सबसे बहुत मीठा बोलेंगे, है ना, सारा दिन मुस्कुराते रहेंगे, है ना। फिर रात को चार्ट चेक करो तो कितने मिनट निकलता है, कितने मिनट निकलता है बोलो। अगर आप एक वो सीसीटीवी लगा लो ना तो उससे पता लग जाएगा आपको ना, उसको देखो कितने मिनट मुस्कुराते रहे, सामने टाइम सीसीटीवी के सामने बैठे रहो, है ना, काम करते करते घर में सारे सीसीटीवी लगे हो, चेक करते रहो कितने मिनट में मुस्कुराता रहा, कितने मिनट सीरियस रहा, नहीं गुस्सा का भी दिखाई देगा ना, गुस्सा भी दिखाई देगा ना, तो मेरा आपको चेक करो तो कितना पता लगेगा कि मैंने सिर्फ 5% ही में ठीक रहा, 95% में ठीक नहीं रहा। मुरली सुबह सब सुनते हैं बाबा कितनी अच्छी मुरली, इतनी अच्छी मुरली, इतनी संध्या की मुरली कितनी बढ़िया थी, परोपकारी वाली ना, कल की मुरली कितनी अच्छी थी, सारा दिन बाबा बस मैं तो आज सारा दिन ऐसे ही रहूंगा, आज सारा दिन बाबा बार बार बस मैं मुरली मुरली बार बार याद करता रहूंगा, कोशिश करूं हर आधे घंटे मैं आपको याद करूंगा, शाम को चेक करो तो थोड़ी देर तो एक दो बार करते हैं फिर भूल जाते, है ना। तो मतलब ये क्यों होता है हमारे साथ, इस कारण से क्योंकि हमारे कॉन्शियस मन हमारे बस में है, सब कॉन्शियस अनकॉन्शियस मन हमारे बस में नहीं है। चलिए अब इसकी गहराई में हम चलते हैं ना, अनकॉन्शियस क्या है, सब कॉन्शियस क्या है, और क्योंकि जब तक हम इसलिए कहते हैं ना, देखिए देवताओं का जो मन होता है ना 100% कॉन्शियस होता है। देवता का मन कैसा होता है, बाबा कहता है तुम्हारा क्या होना चाहिए, कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, मन पर कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर होनी चाहिए। मेरा मन कितने परसेंट मेरे बस में है, सिर्फ 5%, 95% तो मेरा सुनता ही नहीं है ना, अब बताइए कैसे उस पर कंट्रोलिंग रूलिंग करेंगे, है ना। तो फरिश्ता माना जब हमारा मन 100% कॉन्शियस हो जाए, सब कॉन्शियस भी खत्म हो जाए और अनकॉन्शियस भी खत्म हो जाए, तब हम फरिश्ता बनते हैं, और फरिश्ता बनने के बाद फिर देवता बनते हैं, राइट। क्योंकि कॉन्शियस माना ट्रांसपेरेंट है ना, आर पार दिखाई देता है ना, हम सब कॉन्शियस मुझे पता ही नहीं, अनकॉन्शियस माना धुंधला, कुछ दिखाई नहीं देता आर पार, तो फरिश्ता कैसा होता है, आर पार दिखाई देने वाला ना, ट्रांसपेरेंट ना, तो तभी वो अपना भी अपना तो उसको हाइट क्लीन, एकदम 100% क्लीन और क्लियर है, उसकी बुद्धि और मन एकदम 100% क्लीन और क्लियर है, किंतु सामने वाला कभी समझ जाता है बिना बोले, फरिश्ता समझ जाता है इसको क्या चाहिए, इसको क्या चाहिए, उसी मनोकामना पूरी करके उड़ जाता है, न्यारा प्यारा ना, सबसे न्यारा, सबका सबका प्यारा, किसी से अटैचमेंट नहीं, पूरी पूरी धरती के पूरे 5 तत्वों से अटैचमेंट नहीं, किसी मनुष्य से लगाव झुकाव टकराव नहीं, तो वो फरिश्ता है ना। चलिए अब हम इसके उसमें चले, तीनों मन कैसे हैं, क्योंकि तभी मन जीते जगत जीत हो सकता है, नहीं तो मन जीते जगत जीत कैसे, मन जीतेंगे जगत जीत कैसे बनेंगे, है ना। तो इसी ज्ञान की इसलिए गुह्यता में, इसलिए मैंने कहा गुह्य गोपनीय और रहस्य युक्त, है ना। तो ये जो हमारा मन है ना, बेसिकली जो हमारी तीन शक्ति ना आत्मा की, बुद्धि मन और संस्कार, तीन चीजें ना, तो आत्मा तो एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, यहां से लगभग 2.5 इंच अंदर 3 इंच नीचे, है ना। तो आत्मा से क्या निकल रहा है, 7 एनर्जी निकल रही है, ज्ञान, जैसे इस बल्ब से क्या निकल रहा है और क्या निकल रहा है, लाइट और गर्मी, है ना, लाइट और गर्मी। देखो ना आपने आकाश में जो सूरज होता है उससे क्या निकलता है, लाइट प्रकाश और गर्मी, इससे भी निकलता है। वोल्टेज बल्ब होता है डायमंड हॉल में, तो क्या उसके नीचे बैठ जाओ ना, ठंडी जरा भी ठंडी नहीं लगती है, बल्कि गर्मी लग, पसीने आने लगते हैं ना, उनके नीचे बैठो उस बल्ब के नीचे तो इतनी गर्मी लगती है, उसके नीचे बात मत पूछो, है ना। इसलिए उसके नीचे बैठने वाले को स्वेटर पहनने की आवश्यकता, सर्दी में भी स्वेटर पहनने की आवश्यकता नहीं होती। तो लाइट और गर्मी, तो ऐसी आत्मा जो है वो अति सूक्ष्म, दिखाई तो बड़ा है तो आत्मा कैसी है, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु, इन आंखों से देख नहीं सकते, माइक्रोस्कोप से देख नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख नहीं सकते, कोई मशीन से इसको देख नहीं सकते, क्योंकि आत्मा जो शरीर है ये फिजिकल है ना, 5 तत्वों का बना हुआ, और आत्मा क्या है, मेटाफिजिकल है, आत्मा मेटाफिजिकल, आत्मा को देख ही नहीं सकते, इसलिए कभी आत्मा को देखने की कोशिश नहीं करना चाहिए। कई लोग कहते हैं मुझे आत्मा दिखाई दी, आत्मा देखनी नहीं, मुझे परमात्मा को देखना है, देखने की चीजें नहीं है, देखने की चीज है क्या, अनुभव करने की चीज है, रियलाइज करने की चीज है, राइट। उसे एनर्जी को अनुभव कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को हम तार में बहते हुए देख अनुभव कर देख सकते हैं क्या? इस तार में बिजली जा रही है, दिखाई दे रही है क्या आपको? पर हम क्या क्या अनुभव कर रहे हैं? पंखा चल रहा है, अंधेरा नहीं है कमरे में तो लाइट है ना, राइट। इस तरह से आत्मा अंदर है, आंख देख रही है। चलिए ओम शांति। तो आत्मा से सात एनर्जी हमेशा निकलती रहती है और उससे ही बुद्धि और मन बनता है। बुद्धि जो है एकदम आत्मा के इमीडिएट जो है वो बुद्धि है, जो यहां हाइपोथैलेमस में ना आत्मा, यहां जो दोनों ब्रेन्स राइट और लेफ्ट ब्रेन का जो जंक्शन है, दोनों ब्रेन्स को कंट्रोल करने वाला जो एरिया है उसको हाइपोथैलेमस कहते हैं, ब्रेन का वो पार्ट है। तो आत्मा यहां बैठती है, नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो आत्मा से वो सात एनर्जी निकलती, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति निकलती रहती है। और जहां जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम उसको बुद्धि कहते हैं, और उसको और उससे जो मन जो है ना, जो मन एनर्जी है वो सारे शरीर में फैल जाती है, और उसके बाहर क्या है? मन है, राइट। तो बुद्धि जो है, बुद्धि का भी सबसे जो इमीडिएट पार्ट है ना, इमीडिएट आस्पेक्ट है जो एकदम आत्मा से नजदीक है, वो क्या, उसे कॉन्शियसनेस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस भी कहते हैं, अंतरात्मा भी कहते हैं, ठीक है, उसे हिंदी में दिल भी कहते हैं, राइट। ये दिल नहीं, ये दिल तो फिर एकदम पंप है, वो दिल आत्मा का दिल है ना, जिस दिल को एक मंदिर भी कहते हैं, वो दिल को कहते हैं दिल मानता नहीं है ना, ये दिल नहीं मानता है ना, ये दिल है अंदर वाला, जैसे इस दिल की बात बाबा करता है, इसका दिलाराम दिल है, दिलाराम इस दिल का है, इस दिल का नहीं, ये तो पंप है, ये तो बॉडी का पार्ट है ना, राइट। तो आत्मा का दिल ये है, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस से कहते हैं बॉडी कॉन्शियस, उस कॉन्शियसनेस में बॉडी घुस गई है ना, उस कॉन्शियसनेस में एक रोल घुस गया है, मैं डॉक्टर हूं, मैं मां हूं, मैं बाप हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, उस कॉन्शियसनेस में चला, उस दिल में चला गया ये बात। तो वो दिल में जाने से फिर आदमी वो बोलता है, ठीक, और इस दिल का असर इस दिल पर होता है, इस दिल में कुछ गलत, इस दिल में जो बैठ जाता है उसको कुछ गलत होता है ना, या वो कुछ गलत कर देता है हमारे साथ, तो फिर इस दिल पे असर होता है, राइट, समझ रहे। तो इसे कॉन्शियसनेस, कॉन्शियंस है ना, दिल कहते हैं, राइट। इसमें सात गुण भरे होते हैं, ज्ञान, गुण, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां। किंतु इस दिल में भी क्या है, ये कॉन्शियस जो है, कहते ना मेरी अंतरात्मा इसके लिए गवाही नहीं देती, चोर भी कहता है, डाकू भी क्या बोलेगा, नहीं नहीं मैं ये गलत काम नहीं करूंगा। देखा था आपने, डाकू कौन सा डाकू था, पंचम डाकू था ना, पंचम सिंह भाई, मैं ऐसा काम नहीं, उसके दिल में एक बात बैठी हुई है कि मुझे ये गलत काम, हालांकि सबको मारता है, गोली से मार देता है ना, किंतु एक गलत काम मैं नहीं करूंगा, मतलब उसके अंदर, उस अंतरात्मा में, कॉन्शियस में ये बात है बैठी हुई, कुछ ना कुछ अच्छाई उसमें है आज भी बची हुई, पूरी ज्योति बुझ नहीं गई है, राइट। सत्युग में कैसा होता है, दिल कॉन्शियसनेस फुल ऑफ सेवन एनर्जीज, सातों गुणों से भरपूर, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्तियों से भरपूर है दिल, इसलिए सोल कॉन्शियस है, राइट। इसलिए सत्युग में कैसे होते हैं हम सभी, आत्म अभिमानी होते, कैसे होते हैं, आत्म अभिमानी होते हैं। मैं बोलते हैं कि मैं आत्मा हूं अति सूक्ष्म ज्योति, सत्युग में देवता ऐसे बोलते हैं ना, सुबह सुबह उठ के, मैं आत्मा हूं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं, शांत स्वरूप आत्मा हूं, पवित्र स्वरूप, ऐसे बोलते हैं क्या, है ना, क्योंकि इतना अंदर भरा हुआ है कॉन्शियसनेस पे, हमारी कॉन्शियसनेस पूरी भरी हुई है सातों गुणों से। सत्व प्रधान शब्द कहां से आया, सत्व प्रधान शब्द कहां से आया बताओ, सत्व माना सात, प्रधान माना भरपूर, सातों गुणों से भरपूर, इससे देवी देवता कैसे होते हैं, सत्व प्रधान, और सतो प्रधान को ही पावन कहते हैं, सतो प्रधान को ही क्या कहते हैं, पावन, पवित्र कहते हैं, राइट। तो जब आत्मा, जब हमारा दिल सातों गुणों से भरा है, तो उसके बाहर जो दूसरा एस्पेक्ट, बुद्धि का दूसरा एस्पेक्ट कौन सा है, डायमेंशन कौन सी है, आत्मा की, मन की मैंने चार डायमेंशन आपको बताई, अब बुद्धि की चार डायमेंशन कौन सी है, तो पहली डायमेंशन है कॉन्शियसनेस या दिल, या कॉन्शियंस या अंतरात्मा, एक ही बात है, चारों में से कुछ भी बोल दो, है ना। और फिर दूसरी डायमेंशन कौन सी है? दूसरी डायमेंशन है विवेक, इंग्लिश में उसको विजडम कहते हैं। तो ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद के आधार पे ही हमारी परखने की शक्ति बनती है ना? विवेक माना परखने की शक्ति के, ठीक है कि गलत है नहीं। ज्ञान माना समझ, ज्ञान माना समझ, समझ के आधार पे पवित्रता आई, पवित्रता के आधार पे शांति आई, शांति के आधार पे प्रेम आया, प्रेम के आधार पे सुख आनंद आया नहीं। अब जिसमें सुख और आनंद आया उसमें मैं क्यों, क्या पावर डिस्क्रिप्शन आई ना, विवेक मेरा काम करता है कि राइट क्या रॉन्ग क्या। तो सत्य में हमारा विवेक कैसा होता? सत्य विवेक होता है, सद विवेक कहते हैं उसको, या ईश्वर जैसा विवेक होता है। कैसा विवेक होता है? ईश्वरीय विवेक होता है। फिर विवेक के आधार पर बुद्धि बनती है। एक तो बुद्धि टोटल बुद्धि होगी ना, ये बुद्धि प्रॉपर हो गई, बुद्धिमान निर्णय करने की शक्ति। अब इसके विवेक के आधार पर फिर हम निर्णय करते हैं कि ये मुझे ये करना है ये नहीं करना, राइट। तो हमारी बुद्धि वहां कैसी होती है? सद बुद्धि होती है। सत्य में हमारी बुद्धि कैसी होती है? दिव्य बुद्धि भी कह सकते हैं, देवताओं जैसे दैवी गुणों पर आधारित बुद्धि होती है। तो जैसे ही हमें कोई बात हमें आती है हमारे सामने, एकदम दिल भरा हुआ सातवें एनर्जी से, और विवेक एकदम ईश्वर जैसा है, बुद्धि एकदम से दिव्य है, और क्या होता है चित्त कैसा होगा? चित्त माना सबकॉन्शियस माइंड। चौथा जो एस्पेक्ट है, डायमेंशन है दिल की, बुद्धि की, क्या है? चित्त। चित्त माना सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। तो चित्त में क्या होता है? वहां पर देवताओं के चित्त में क्या होता है? क्या होता है? जो दिल में सो चित्त में, जो दिल में सो चित्त में, ठीक है। क्योंकि अंदर बुद्धि, बुद्धि कैसी है? विवेक कैसा है? विवेक सत्य है, बुद्धि भी सत्य है। दिल में सत्य है तो बुद्धि, विवेक भी सत्य है और बुद्धि भी सत्य है। और चित्त कैसा होगा? चित्त में क्या होगा? शांत होगा चित्त हमारा, एकाग्र होगा और आनंदमय होगा। इसलिए कहा जाता देवता कैसे होते हैं? सच्चित आनंद स्वरूप। दिल में सत्य है तो चित्त कैसा है? आनंद स्वरूप है। इसलिए बाबा को भी हम क्या बोलते हैं? शिव बाबा को क्या बोलते हैं? वो सदा सच्चित आनंद स्वरूप है। हम कभी सच्चित आनंद स्वरूप होते हैं? सिर्फ सत्युग त्रेता में, बाकी सारा टाइम क्या हो जाते हैं? गड़बड़ घोटाला नहीं। सिर्फ सत्य त्रेता में हम भी ऐसे। इसलिए हमें लोग क्या कहते हैं देवी देवताओं को? भगवान भगवती कहते हैं, क्योंकि हम भी, हमारे अंदर भी वैसे जैसे बाबा भगवान सच्चित आनंद है, ऐसे हम भी सच्चित आनंद स्वरूप होते हैं। ठीक है, समझ में आई ये बात आपको? फिर उसके बाद बुद्धि, फिर हमारा मन आ गया। मन में क्या है? स्मृतियां हैं, स्मृति है ना, मेमोरीज। तो स्मृति में कैसा है? फिर स्मृति में जो अंदर है ना, दिल में है, वही स्मृति में, कहीं रुकावट है ना, कहीं भी रुकावट नहीं है। तो जो दिल में है वो स्मृति में, स्मृति में क्या है? मैं आत्मा हूं, पवित्र स्वरूप हूं, वो भी आत्मा है, पवित्र स्वरूप है, मैं भी शांत, ये भी शांत, मैं भी प्रेम स्वरूप, वो भी प्रेम स्वरूप। बोलते नहीं है, पर प्रैक्टिकल में, संस्कारों में होता है वो। अतिंद्र सुख की अनुभूति में रहते हैं, आनंद स्वरूप स्थिति में रहते हैं, सर्वशक्तिमान की स्थिति में रहते हैं। हर सत्य में कोई चीज प्राप्त नहीं होती, जो संकल्प वो हासिल हो जाता है, राइट। वृत्ति कैसी होती है सबके प्रति? आत्मिक। भावना कैसी होती है? शुभ। संकल्प कैसे होते हैं? शुभ। संकल्प में चार बातें होती है, शुद्ध, श्रेष्ठ, शक्तिशाली, कल्याणकारी। चार बातें, शुद्ध, श्रेष्ठ, शक्तिशाली, कल्याणकारी, ठीक है। ज्ञान का, ज्ञान, ज्ञान के भी चार एस्पेक्ट है, हर चीज के चार चार बातें हैं, ठीक है। ज्ञान में क्या है बेसिकली? ज्ञान वैसे तो बहुत बड़ा है, बाबा कहता है सारे सागर को शाही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, धरती को कागज बनाओ, तो भी खत्म नहीं होता है ना। कि तो सार रूप में क्या है? ए बी सी डी, ए फॉर आत्मा, बी फॉर बाबा, सी फॉर कनेक्शन, मतलब मेरे सर्व संबंध उसके साथ है, डी फॉर ड्रामा। तो ये सत्युग में भी होता है, तो संस्कृत संस्कारों के रूप में होता है। बाबा ने कहा बाबा कैसे हमारे साथ होता है? शिव बाबा हमारे सत्युग में हमारे साथ होता है? नहीं होता है, किंतु होता है। कैसे होता है? संस्कारों के रूप में होता है। कैसे होता है? मैं ठीक कह रहा हूं बहन जी, गलत कह रहा हूं? संस्कारों, हमारे बाप समान संस्कार होते हैं, दाता के संस्कार। बाबा कौन है? दाता। शिव बाबा सागर है ना, तो हमारी ऐसी स्थिति, हमारे बाप हमारे संस्कारों में समाया होता है, और बाप से हर संबंध की अनुभूति होती है, उसका प्रैक्टिकल संस्कार हमारे अंदर होते हैं। तो ऐसा हमारा स्वरूप भी ऐसा होता है, जैसे राजा हो कोई भी होगा ना, उसके अंदर से माँ का सबको माँ का प्यार देता है, सबको बाप का प्यार देता है, सबको जैसे हर एक के प्रति ऐसा प्यार, हर संबंध हर एक से अनुभव कर सकते हो, राइट। तो उस संस्कार हमारे व्यवहार में, हमारा व्यवहार में दिखाई देता है, हर देवता के व्यवहार से दिखाई देता है, हर देवी के व्यवहार से दिखाई देता है। तो बाबा हमारे संस्कारों में समाया हुआ है ना, शिव बाबा हमारे संस्कारों में समा जाता है, स्थूल रूप में नहीं, नीचे नहीं आके हमको पढ़ाता है, पर तो हमारे संस्कारों में समाया होता है, तभी तो हम देवता बनते हैं, राइट। तो ये जो है बाबा, ऐसे हमारे हर संबंध बाबा के समाया, ड्रामा हमारे ने हमारे संस्कारों में समाया हुआ है। संसार रूपी ड्रामा में हर आत्मा एक्टर है, कर्म सिद्धांत के अनुसार हर आत्मा एक्यूरेट पार्ट बजा रही है, बाबा इसका डायरेक्टर है, कर्म सिद्धांत के अनुसार एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहा है, इसलिए अभी तक जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा, जो होने वाला बहुत अच्छा, किसी बात पर रिएक्शन नहीं करते वहां पर, है ना। तो अपने आप ऑटोमेटिक चलता आता है, तो ये वहां पर स्थिति होती है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा अभी तो हमारा मन और बुद्धि कैसा हो गया, बुद्धि एकदम साफ सुथरी, मन कैसा साफ सुथरा, तो वो स्थिति कैसी है हमारी, ये है हमारा सूक्ष्म शरीर। तो मन और बुद्धि मिलके ही सूक्ष्म शरीर बनता है, राइट। सूक्ष्म शरीर क्या है, मन और बुद्धि आत्मा के सूक्ष्म शक्तियां हैं, और सूक्ष्म शरीर कुछ और नहीं, मन और बुद्धि ही सूक्ष्म शरीर है, क्योंकि सत्युग में ये 100% क्लीन होता है, क्लीन और क्लियर होता है, बुद्धि क्लीन मन क्लियर, तो इसलिए हमारा सूक्ष्म शरीर एकदम स्वच्छ होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। और ये स्थूल शरीर कैसा होता है, स्थूल शरीर भी कंचन की तरह से, कंचन माना प्रकृति के तहत पांचों तत्व भी सत्व प्रधान है, आकाश भी सत्व प्रधान, अग्नि भी सत्व प्रधान, वायु भी सत्व प्रधान, और जल भी सत्व प्रधान, और धरती भी सत्व प्रधान, इसमें भी स्पिरिचुअलिटी समाई होती है, इसमें भी आत्मिक गुण समाये होते हैं। जैसे ये भी करंट वाला है, जैसे मैंने सोचा प्रकृति वैसी हो जाएगी, मैं बाहर निकला अभी बरसात हो रही है, मैं बाहर निकला बरसात बंद, मतलब बरसात की हिम्मत नहीं मेरे ऊपर गीला कर दे, है ना, हवा की हिम्मत नहीं मेरी आंख में कुछ आकर गिर जाए, है ना, वो मेरे साथ कनेक्टेड है, राइट। जैसे अभी भी कहते हैं दादियां हमारी हैं, तो जैसे बड़े हैं तो जो होते हैं जो बहुत तपस्या, बाबा ब्रह्मा बाबा थे, मम्मा थी, दादी थी, प्रकाशमणि दादी थी, कैसे प्रकृति को मतलब वश कर ले, बस उसने इतनी तपस्या करने से प्रकृति जीत बन जाते थे, तो वो स्थिति हमारी वहां पर होती है, ठीक है। तो कंचन का है, धरती पर ऑक्सीजन भी कितनी परसेंट होती है, 50%, अभी कितनी है 20%, अभी हमारे लात लाल लाल दिखाई देते हैं, लाल क्यों है, ऑक्सीजन की वजह से, और जहां 50% होगी कितने लाल होंगे, कितने लाल होंगे बताओ, इतनी ऑक्सीजन में क्या होते, जितने भी कहते हैं कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू काकरोच बैक्टीरिया वायरस जितने बीमारी वाले कीटाणु कहां रहते हैं, जहां ऑक्सीजन कम होती है, तो वहां तो ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, तो वहां तो ना बैक्टीरिया होते, ना वायरस होते, ना फंगस होती, ना सांप होते, ना बिच्छू होते, ना मच्छर होते, ना मक्खी होती है, ना जिंदा ही नहीं रह सकते, वहां कोई आपको ऑल आउट लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, तो वहां पर है ही नहीं आस्था, तो ये है सत्ययुग, ठीक है, राइट। तो हमारा ये लक्ष्य, ये है मन जीते जगत जीते, राइट। सत्ययुग देवी देवता क्या है, मन जीते जगत जीते, मन पे जीत है ना, 100% क्लीन है, सबकॉन्शियस माइंड भी साफ है, और अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड तो है ही नहीं, उसमें कुछ है ही नहीं, वो भी ज्ञान पवित्रता शांति प्रेम सुखान भरा हुआ है, और कॉन्शियस माइंड तो एकदम साफ सुथरा है, स्मृति वृत्ति भावना संकल्प तो एकदम कंट्रोल में, तो ये हमारा, और अनकॉन्शियस माइंड है ही नहीं, क्योंकि जैसे क्या होता है अनकॉन्शियस माइंड क्या, अब आगे चलते हैं, चलो 21 जन्म पार कर लिए, एक जन्म ही होगा 20 होगा पार हुआ, अब 22वें जन्म में आ गए, अभी हम लोग हमारी एनर्जी आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होने से, हमारा मोबाइल है ना मैं यूज नहीं करता हूं तो भी रखा रखा कुछ ना कुछ गड़बड़ करता रहता है, शाम को देखो बैटरी आधी हो जाती है, मैंने एक बार भी फोन नहीं किया, फोन सुना भी नहीं, शाम को देखो तो बैटरी अपने आप आधी हो गई, मैंने यूज ही नहीं किया। सत्युग में हमारे कर्म अक्रम है, तो भी शाम को इसमें मैसेज आते रहते हैं, कुछ आता रहता है, अपने आप ही वो पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, मेरे को तो पता भी नहीं ज्यादा, वो क्या GPRS होता है, पता नहीं क्या क्या चीज चलती रहती है, अपने आप ही धंधा करता रहता है, बैटरी खत्म करता रहता है। तो शाम को बैटरी, ऐसे ही हमारी कुछ ना करे, गलत काम किए नहीं तो भी बैटरी आधी हो जाती है, आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज आधी हो गई। आधी होने के बाद क्या होता है, अभी आत्मा सत्युग में क्या करती है, बुद्धि को भी करंट दे रही है, मन को भी करंट दे रही है, बुद्धि का पोषण भी करती है, मन का भी पोषण कर रही है, आत्मा का पोषण भी कर रही है। अब करंट आधी हो गई, 50% हो गई, तो 50% तो ठीक है कि तो जैसे ही सत्युग में हमारे संकल्प काम करते हैं, जो संकल्प करते हैं वही हो जाता है, संकल्प हर संकल्प सिद्ध होता है, वैसे संकल्प नहीं चलते। अब जैसे आया ना द्वापर, द्वापर का शुरुआत होने को होती है, तो हमारे क्या होता है, एनर्जी कम हो गई। अब क्या होता है, आत्मा की एनर्जी जैसे ही 49% होती है, 50 से 1% कम हुई तो क्या हुआ, मन की एनर्जी 51% हो जाती है। अब मन क्या बन जाता है, पहले आत्मा राजा थी, स्वराज्य अधिकारी, स्व माने आत्मा, आत्मा का राज्य था मन बुद्धि संस्कार पांचों कर्मेंद्रिय आठों अंगों पर। अब जो है आत्मा, भैया मैं 10 मिनट और ले सकता हूं, वैसे मुझे जाना था जल्दी, इसलिए मैं जल्दी आया था, पर मेरे को मैंने कहा धीरे धीरे बोल के बताऊं तो अच्छा, ताकि समझ सके ना, मैं करंट लगा के जल्दी जल्दी बोल जाऊं तो आपको समझ नहीं आएगा, है ना। अच्छा, तो समझ में आ रहा है, वैसे ऊपर से जा रहा है, जिनके ऊपर से जा रहा है वो हाथ उठाओ। है जी, पक्के हो गए ना, अभी तो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अच्छा, बुद्धि के चार एस्पेक्ट कौन से हैं, बताओ दोबारा से बताओ, कौन बताएगा, आप बताएं बुद्धि के चार एस्पेक्ट कौन से हैं? आप पहले पहले लाइन में बैठे, भाई साहब से पूछ रहा, बुद्धि के चार एस्पेक्ट डायमेंशन कौन कौन से हैं, आप बताओ, दिल, विवेक, बुद्धि और चित्त, ठीक है, और मन के डायमेंशन कौन कौन से होते हैं, स्मृति, वृत्ति, भावना और संकल्प, ठीक है, यही हमारा सूक्ष्म। तो अभी जो है हमको ये, तो अभी हम सत्य पहुंचे, द्वापर में पहुंच गए ना, द्वापर के शुरू में पहुंच गए, तो आत्मा की एनर्जी जैसे जैसे आधी से कम होती है तो मन राजा बन जाता है। मन जिसका 51% एनर्जी होगी ना, तो वो क्या राजा, वो बन जाएगा, है ना, राजा वो बन गया, तो अभी क्या बन गए, मनुष्य शब्द, अभी देवता नहीं कहला सकते, अब क्या कहलाते, मनुष्य, मनुष्य माना मन के वश में, अभी मन का राज्य शुरू हो गया, ठीक है, मन, मनुष्य का मतलब ही है मन के वश में, मन के हवाले, मनुष्य, है ना, इसका इसका संधि विच्छेद करो ना, तो मनुष्य का मतलब है मन के वश में, अब मन राजा बन गया, ठीक है। मन का कनेक्शन किससे है, पांच कर्मेंद्रियों से, आंख से, नाक से, मुख से, कान से और त्वचा से, हाथ पैरों से। अब क्या करता है मन, क्या मन, मन कहां से एनर्जी लेना शुरू करता है, पांच तत्वों से, बाहर के, आकाश, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी। अब दूसरों को, दूसरे की देह दिखाई देनी शुरू हो जाती है। अब पहली बार आधे कल्प के बाद देह दिखाई देनी शुरू करती है, उसके पहले देह दिखाई नहीं देती थी, हमें गुण दिखाई देते थे, गुणों में व्यवहार था, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, गुणों का व्यवहार था, किसी की देह दिखाई नहीं, देह का भान ही नहीं था, सबके गुण, गुणों से नाप करते थे हरेक। अब देह दिखाई देती, इसकी नाक ऐसी है, इसकी शक्ल ऐसी है ना, संकल्प चलना शुरू हो गया। तो पहले पहले ऐसे पहली बार देह पे बुद्धि जाती है तो काम विकार आता है, फिर काम के साथ क्रोध आता है, क्रोध के साथ लोभ आता है, लोभ के साथ मोह आता है, बच्चे होते हैं ना, मोह के साथ अहंकार आता है, उसका पैसा इकट्ठा करते हैं, मकान बनाते हैं, क्योंकि टूट फूट जाता है फिर दोबारा बनाते हैं, तो फिर सब इक्वल नहीं रहता है, इम्पार्शियल हो जाता है, तो अहंकार आता है। तो इस तरह से पहली बार हमारा अंदर ये डैमेज होना शुरू होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर धीरे धीरे, फिर आत्मा भी, आत्मा करंट कम हो गई, अब आत्मा मन के वश में हो गई, कर्मेंद्रिय के वश में हो जाते हैं, अब आत्मा के पास एनर्जी कम है, तो इसलिए अब आत्मा नरिश क्या, किसको, आत्मा किसको नरिश कर रही है, अब मन बुद्धि क्या बन गए, अब कंट्रोल खत्म, मन बुद्धि पे कंट्रोल खत्म, अब सिर्फ आत्मा बॉडी को नरिश करती है। फिर कलयुग आ जाता है, एनर्जी और कम हो जाती है, और धीरे धीरे आते आते क्या होता है, अब आत्मा कंट्रोल मन बुद्धि पे जरा सा पहले होता है, किंतु मन बुद्धि पे बिल्कुल कंट्रोल खत्म, कोई विचार हमारे जो नियम के अनुसार मर्यादा के अनुसार कोई विचार नहीं चलते, कोई कंट्रोल नहीं, और सिर्फ बॉडी को नरिश करती है, वो भी नाम मात्र। जरा ठंडी ठंडी हो गई, शरीर खराब हो गया, बीमार हो गया। जरा सा कुछ खान पान में ऊपर हो गया, खराब हो गया, बीमार हो गया। थोड़ा सा किसी ने कुछ कैसे दर्द शुरू हो गया, किसी ने कुछ कह दिया सांस फूल गया, है ना। तो मतलब एकदम बॉर्डर पे जैसे खड़े, बॉर्डर में खड़े नीचे गए, है ना, एक पैर गलत के आगे बढ़ाया नीचे गए। अब ये हालत है। अब इस हालत में जब तमो प्रधान आत्मा के पास बिल्कुल करंट नहीं है, बिल्कुल नाम मात्र करंट है, इसे किसी को पूछे तुम कौन हो, क्या बोलता है, मैं तो बिजनेसमैन हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो दो बच्चों का बाप हूं, है ना। तो मतलब वो अपना अपनी कॉन्शियसनेस खत्म हो गई, बिल्कुल खत्म हो गई, राइट। ऐसी हालत हो जाती है। तो अभी जैसे मेरे 60 जब 22वां बर्थ हुआ ना, तो 22वें जन्म में जो मैंने गलत काम किए ना, वो कहां जमा हो गए, सबकॉन्शियस माइंड में। अब मेरे आत्मा में दिल में सात गुण कम हो गए थे, विवेक कैसा हो गया, कंफ्यूज हो गया, दिल में क्या चला गया, देह चली गई, देखा ना, आंखों से देखा, देह चली गई, बच्चे हुए, देह के संबंध चले गए, देह का स्वभाव क्या है, ये विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, देह का संस्कार आदत क्या है, देह की आलस, अलबेलापन, दूसरों में दोष निकालना, शक अनुमान चिंता भय जल्दीबाजी और ईर्ष्या, ये किसके, देह के आदत है। कहां चले गए वो, दिल में चले गए, और देह के पदार्थ, मकान महल सब सब जायदाद, वो सब कहां चले गए, दिल में चले गए। तो अब जो है सब दिल में चला गया, कॉन्शियसनेस में चला गया। अब बुद्धि के अविवेक कैसा हो गया, कंफ्यूज हो गया। अब सपोज मेरा 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 बेटा है या मेरा मतलब मेरी युगल है, कुछ गलत कर रही है और मेरे को उससे बहुत प्यार है, तो मैं क्या करूं, गलत होती गलत कर रहे हैं तो भी क्या होगा, उसको बोलूंगा तुम गलत कर रहे हो, क्योंकि दिल में है, वो नाराज हो जाएगी, है ना। या मेरे पिताजी है, मेरी माँ है, या मेरा भाई है, वो मैं गलत कर रहा है, मैं जानता हूं गलत कर रहा है, तो भी मैं उसको बोलूंगा नहीं, क्योंकि नाराज हो जाएगा। तो अब विवेक विवेक बोलूं कि नहीं बोलूं, बोलूं कि नहीं बोलूं, है ना, विवेक निर्णय नहीं कर, विवेक परख नहीं पा रहा, गलत दिखाई नहीं देता है कि ठीक है, नहीं नहीं ये ठीक है, ये गलत है, जो मेरे खिलाफ है वो हर काम उसका ठीक भी गलत है, और जो मेरे साथ है उसके हर चीज गलत भी ठीक है, नहीं होता ऐसा, ऐसा होता है या नहीं होता है। तो विवेक कंफ्यूज हो गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, बुद्धि क्या हो जाती, भ्रष्ट, निर्णय कर ही नहीं पाती है। अब चित्त क्या होगा, अब जो भी मेरे साथ हो रहा है, दिल में जो देख रहा हूं मैं हो रहा है, वो फाइल कहां जा रही है, मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूं, वो फाइल सारी चित्त में जाती, सबकॉन्शियस माइंड में जाती, सबकॉन्शियस माइंड में जा रही है, मेमोरी में नहीं जा रही, स्मृति में नहीं जा रही। तो स्मृति मेरी, स्मृति में विकार की रिकॉर्डिंग हो रही है, दे के संबंध, दे के स्वभाव संस्कार, दे के पदार्थों की रिकॉर्डिंग हो रही है, और चित्त में क्या जा रहा है, जो मैं कर नहीं पा रहा हूं वो चित्त में जा रहा है। इसने मेरा मन चित्त कैसा हो गया, अभी अशांत और चंचल हो जाता है, कैसा हो जाता है, अशांत और चंचल हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए मेरा विवेक, मेरा चित्त अशांत और चंचल हो गया। अब बुद्धि में स्मृति में क्या गया, वही दे के संबंध, दे के स्वभाव संस्कार, दे के पदार्थ, वृत्ति कैसी हो गई, सबके प्रति देह वाली, देह दिखाई देती है, ऐसा है, ये गोरा है, ये इसकी नाक अच्छी है, इसका ये ऐसा अच्छा है, ये लंबा है, ये छोटा है ना, ये पैसे वाला है, मतलब देह की वृत्ति, देह के संबंधों की वृत्ति, देह के स्वभाव, ये मेरा है, ये नहीं, मेरा नहीं है, ये मेरी है, ये मेरी नहीं है, ये देह के संबंध की, देह के स्वभाव संस्कार की, इससे मेरा ये पर्पज सॉल्व होता है, इसको मुझे बिजनेस में मुझसे फायदा है, तो वो वाली वृत्ति है ना, देह के पदार्थों वाली वृत्ति, इससे कुछ मिलने वाला है, इसके प्रति वृत्ति। फिर देख उस पर भावना कैसी हो जाती है, लगाव झुकाव प्रभाव और टकराव वाली, लगाव झुकाव प्रभाव और टकराव वाली। संकल्प कैसे चलते हैं, इसी अनुसार संकल्प चलते हैं। और बॉडी कैसी, बीमार, दो बीमारी सबको फ्री है ना, उसके अलावा जिसको भी चाहिए इतनी और चाहिए ले सकता है नहीं, तो मन भी दुखी और तन भी रोगी है ना, तो ये हालत हो जाती है। अब क्या करें, अब जो मैंने 22वें जन्म में पाप किए ना, गलत विकार पाप माना विकारों के वश किए विक्रम, वो जब 23वां जन्म मिला ना, तो क्या क्या हो गया, जो 22वें जन्म के पाप अनकॉन्शियस माइंड में चले गए, पिछले जन्म की मेमोरी, उसके आधार पर मुझे क्या मिला, अब माँ बाप मिले, 22वें जन्म में पाप किए ना, उसके आधार पर मुझे माँ बाप मिलेंगे, भाई बहन मिलेंगे, मकान मिलेगा, घर मिलेगा। अब 23वां जन्म आ गया, अब 22वें जन्म का सबकॉन्शियस माइंड खत्म, अनकॉन्शियस बन गया, और 23वें जन्म का अब सबकॉन्शियस माइंड शुरू से बनना शुरू हुआ, और 22वें जन्म का मतलब जो 22वें जन्म में मैंने पाप किए थे अनकॉन्शियस माइंड का असर अब मेरे बुद्धि दिल पर पड़ता है, बुद्धि पर पड़ता है। अब जैसे मान लो अभी आपको मैं बताता हूं, जैसे मान लीजिए आप ज्ञान में चलना चाहते हो, आपकी सास आपको नहीं आने देती, कहते तुम कहां जाती हो, तुम तो राधा स्वामी में चलो मेरे साथ, तुम्हारा पति नहीं आने देता, ये क्या है, पति के पति ऐसा क्यों मिला, पिछले जन्म के पाप है, अनकॉन्शियस माइंड असर कर रहा है आपके ऊपर, आप चाह करके भी नहीं कर सकते। सारे लोग घर में 7 बजे उठते हो, आप 4 बजे उठते हो, लाइट जला भी नहीं सकते, लाइट जलाओगे तो तंग करेंगे, कहेंगे तुम्हारे मैं खुद भी नहीं सोते, मैं भी सोने देते, सफेद कपड़े क्यों पहनते हो, मैं मर गया क्या, ऐसे ही बोलेंगे ना, नहीं आपको अच्छे लगते सफेद कपड़े पहनना, किंतु सास क्या बोलेगी, बोलो ऐसा बोलेगी नहीं बोलेगी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसे अनकॉन्शियस माइंड हमारे इस जीवन को प्रभावित करता है। आप चाहते हो यज्ञ में देना, आपके घर में पैसे ही नहीं है, क्योंकि गरीब घर में जन्म लिया है, तो अनकॉन्शियस माइंड ऐसे फिर हमें प्रभावित करता है, आप चाहते भी कर नहीं सकते हो, तो ऐसे हमारी बुद्धि दिल पे प्रभाव, बुद्धि पर प्रभाव होता है, राइट। तो अनकॉन्शियस माइंड का ये हमारे पाप है, कहते हैं हम करना चाहते हैं, दिल हमारी होती है हम ऐसा करें ऐसा करें, किंतु कर नहीं पा रहे, क्या करें, सहयोग ही नहीं मिलता है, तो ये हमारा अनकॉन्शियस माइंड है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे और कॉन्शियस सबकॉन्शियस इस जन्म का सबको इस सबकॉन्शियस में जो हमने किया ना सारे दिन हम गलत करते हैं, इस जन्म में जो गलत किया है या निर्णय नहीं कर पाए वो सपनों में आता है, जैसे सोते हैं ना शांत होता है मन, ये तो कॉन्शियस माइंड जागते हैं, कॉन्शियस माइंड ध्यान एक्टिव रहता है, जैसे सोने जाएंगे सबकॉन्शियस एक्टिव हो जाएगा, वो नींद वो सपने आएंगे फिर, वैसे जो जो आप कर नहीं पाए ना दिन में और रात में सपने आएंगे, तो नींद भी कच्ची, नींद फ्रेश करने वाली नींद नहीं आएगी, थकी, रात में जागते रहते हैं रात में कच्ची नींद, दिन में जहां बैठोगे सो जाओगे, उठाओ तभी उठ जाओ ना फिर सो जाएंगे, फ्रेश नहीं रहते, थका 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 शरीर, हाथ में दर्द, पैर में दर्द, सिर में दर्द, एनर्जी नहीं है, चाय पी पी के गाड़ी चलाते हैं, धक्का लगाते हैं, नहीं नहीं करते ऐसे, चाय कॉफी पी के धक्का नहीं लगाते होते, क्योंकि फ्रेश नहीं फील करते ना, तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है। अब मैं यहां क्लास खत्म करूं, अब बाकी काम अपने आप कर लेना, ठीक है। मन जीते जगह जीत करे ना, मैंने आपको होमवर्क दिया है, बाकी काम आप करेंगे खुद अपने आप, मतलब इस अनकॉन्शियस माइंड को भी जीतना है, पिछले जन्म के पाप कर्म, ये पाप कर्मों का बोझा है, मतलब माँ बाप को भी बदलना है, पति पत्नी को भी बदलना है, बच्चों को भी बदलना है, वो भी आपका फेवर करें, है ना, ये अनकॉन्शियस माइंड है, आप कितना भी तपस्या कर लो आखिरी दिन जब कुछ बात हो जाएगी ना तो क्या होगा, वो आपको रोक देंगे। सबकॉन्शियस माइंड आपके सपने आपको रोक देंगे, आप खूब देर से तपस्या करो रात को सपने में आएंगे ऐसे खराब खराब, आपकी स्थिति खराब कर देंगे, और उसी में मृत्यु आखिरी में अंतमते से गति होगी तो क्या होगा, फिर जैसे जैसे अंतमते होगी वैसी गति हो जाएगी, और फिर इस तरह से आपकी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो इसको करने के लिए बाबा ने हमें बड़ा सिंपल बताया, मैं आखिरी स्टेटमेंट एक लाइन में पूरा करता हूं, इसको जीतने का तरीका क्या है, शिव बाबा ने कहा, गीता में भी कहा है, गीता मतलब पुरानी गीता जो है मनुष्य की, उसमें क्या लिखा है, इसमें 5 स्टेटमेंट है, 5 स्टेटमेंट अगर आप एक पूरा करो दूसरा शुरू होगा। पहला स्टेटमेंट, देह, देह के संबंध, देह के स्वभाव संस्कार, देह के पदार्थ, 4 बातें हैं, देह, देह के संबंध, देह के स्वभाव संस्कार, देह के पदार्थ, ये 4ों को बुद्धि से छोड़ दो, दिल से निकाल दो, ठीक है। क्या करो, दिल से कैसे निकालेंगे, सोचते रहो चलते फिरते, मैं देह हूं क्या, देह तो यहीं रह जाएगी, अभी निकल जाऊं देह तो यहीं पड़ी रह जाएगी, मैं तो आत्मा यहां बैठी 7 गुणों से को चला रही हूं, फील करो मैं आत्मा चला रही हूं, देह तो कुछ भी नहीं है, अभी निकल जाऊं, बार बार निकलने की प्रैक्टिस करो, चलते फिरते उठते बैठते मैं अलग हूं उससे, फिर देह के संबंध, पति पत्नी बच्चे माँ बाप भाई बहन माता पिता, ये तो मेरे हैं क्या, कोई मेरा नहीं है, मेरे तो सब वो है ना, फील करो एक एक संबंध को बाबा से, फील करो चलते फिरते उठते बैठते, फील करो, फिर देह के स्वभाव, काम क्रोध लोभ मोह साथ जाएंगे क्या? ऊपर जाता है क्या काम क्रोध? जाता है क्या ऊपर? जाएगा नहीं। तो इसको सब यहीं छोड़ू, जल्दी छोड़ू, ना जाने कब अंत मत, कब अंत समय आ जाए, है ना। आलस जाएगा साथ में, संस्कार अलबेलापन जाएगा, अपने आप से बात करते रहो। तो इस तरह जितना अपने आप से बात करते जाओगे ये निकलता जाएगा। ठीक है, देखे पदार्थ, ये चीज इसको बहुत प्यार लगती है, मोबाइल मेरे को बहुत प्यार लगता है, इसमें बहुत सारे मैसेज आते हैं, बहुत सारी बात कर सकते हैं, मेरे साथ जाएगा क्या? जाएगा नहीं। बस कुछ भी चीज से प्यार, किसी देह के पदार्थ से प्यार ना हो, कपड़ों से भी प्यार ना हो, किसी चीज से प्यार, इनको निकालो बुद्धि से, है ना। तो इसको बार बार चलते फिरते अपने आप से बात करो, तो जब ये चार बुद्धि से निकालेंगे तो फिर अपने को आत्मा समझ, तब समझ आएगा मैं आत्मा हूं, नहीं तो आत्मा समझ नहीं आता है। बार बार नहीं मैं तो ये हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो ये हूं, है ना। तो ये दिल से निकालने से फिर अपने को मैं आत्मा समझ, फिर मामेकम याद करो। जब अपने को आत्मा समझोगे तो मामेकम याद आएगा, सिर्फ बाबा याद आएगा, कुछ और याद नहीं आएगा। मामेकम याद आएगा तो फिर ये जो पुराने विक्रम है ना यहां पर सब, ये विनाश होंगे। ठीक है, ये विनाश होंगे, ये सब रिकॉर्ड है यहां पर, जो कुछ देखा है, सोचा है, बोला है, खाया इस जन्म में, पिछले जन्म में, सब कुछ यहां भरा हुआ है, वो सब खत्म, विनाश होता जाएगा। वो सिर्फ अमृत वेला ही हो सकता है अभी तो फिलहाल। जब विनाश के दिन नजदीक आएंगे तो सारा 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 संगम ही अमृत वेला हो जाएगा, अभी नहीं है, अभी सिर्फ सुबह के समय हो सकता है। तो सुबह अमृत वेला से बहुत पावरफुल होना चाहिए। ठीक है, तो सुबह का समय करो पावरफुल, एकदम ऐसा हो बस 45 मिनट ना, 45 मिनट परमधाम में जाके बैठ जाओ, सूक्ष्म वतन में भी नहीं, एक बार सूक्ष्म वतन में गुड मॉर्निंग की बाबा को, फिर परमधाम में जाओ। इतनी स्थिति, इतनी तपस्या चाहिए। ठीक है, तो विक्रम विनाश होंगे, और विक्रम विनाश होंगे तो पावन सत्व प्रधान बनेंगे, ये जो चौथा स्टेटमेंट है। और पावन सत्व प्रधान बनेंगे तो बाबा से मिलन बना सकेंगे, ये तो बाबा से जैसे मिलन होता है, बातचीत थोड़ी ना कर पाते हैं, कर पाते हैं क्या? बाबा मेरे संकल्प बाबा को टच हो, बाबा के संकल्प मुझे टच हो, ये है बातचीत, तब हमारी स्थिति ऐसी बनेगी। ठीक है, इसके लिए चार नियम, चार मर्यादाएं। सच्चे ब्राह्मण के चार नियम पक्के होते हैं, चार मर्यादाएं पक्की होती है। सच्चा ब्राह्मण कभी अमृत वेला मिस नहीं करता, पहली बात। ठीक है, पावरफुल अमृत वेला करता है, मुंह उठा, मुंह धो के, ब्रश करके, चेहरे पे अच्छी वाली क्रीम लगा के, है ना, जैसे तैयार होते हैं ना कहीं पर जाने के लिए, तैयार होते कि बड़े आदमी से मिलने के तैयार नहीं है, तो कैसे होते हैं, कंगा उंगा करके अच्छे से ना, अलर्ट पलट हो अच्छे से, फिर बैठ के कपड़े बदल के, है ना, ये नहीं रात वाले कपड़े, कई लोग तो उठे बस ऐसे मुंह को ऐसे लगाते हैं और चलो बैठ जाते हैं, फिर झटके लेते रहते हैं ना, वो अमृत वेला नहीं, बकायदा तैयार होके बैठो। ठीक है, सोफे बैठो, कहीं भी बैठो, जमीन पे बैठो, है ना, फिर बहुत प्यार से अपने ABCD रिवाइज करो, मैं कौन, मेरा मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आ रहा, मेरा ये मेरा मतलब संतान, परमात्मा की संतान, मेरे एक संबंध को फील करो, मुख्य 9 संबंध, माता पिता, शिक्षक, सतगुरु, बंधु, सखा, साजन, सर्जन और बच्चा, 9 संबंध, एक एक संबंध की अनुभूति में खो जाओ, और D4 ड्रामा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा, जो होने वाला बहुत अच्छा। इस स्थिति में चलते जाओ, ऊपर जाते जाओगे अपने आप ही, पहले सूक्ष्म वतन में पहुंचोगे, परमधाम में, परमधाम में टिक जाओ, फिर वहीं टिके रहो। तो इस तरह से आपके विकल्प दर्शन में। ठीक है, तो पावरफुल अमृत वेला। दूसरा, फिर उठते जब ये करने के बाद ना, 5 किताबें होती हैं, 5 किताबें अमृत वेला किताब है, मिलती है अपने यहाँ पर। दूसरा, संपूर्ण पवित्रता नाम किताब है, वो भी बाबा के अव्यक्त महावाक्य है। तीसरी, कर्मयोगी फरिश्ता है। चौथी, कर्म विधेयी अवस्था किताब है। और 5वीं, शुभ भावना शुभकामना किताब है। 5ों किताब से एक एक पॉइंट पढ़ लो। ठीक है, फिर नहाओ, इसी बाबा की याद में नहाओ, ये बाबा का रथ है, मैं इसको साफ कर रहा हूं, तो नहाओ, नहा के फिर बाबा की मुरली में चले जाओ। 8 बजे तक दुनिया का कोई चीज देखो मत, टेलीविजन, ये मोबाइल, टेलीविजन, अखबार, लोगों से बात करना, जहां तक हो सके नहीं करो, बहुत जरूरी है तो करो, भले खाना सब्जी काटो, खाना बनाओ और कोई काम करो, किंतु 8 बजे तक बाबा के लिए टाइम रिजर्व है, चार्जिंग टाइम है। तो अमृत वेला और मुरली या टेंशन बहुत बहुत आवश्यक है, ये सच्चे ब्राह्मण की निशानी है। फिर 8 बजे के बाद वो अपना नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद नाश्ता कर, फिर 8 बजे के बाद लोगों से बोलना शुरू करो, मोबाइल को ऑन कर लो। ठीक है, फिर अपना हर आधे घंटे में, ये बाबा का लव लेटर है ना, मुरली बाबा का लव लेटर, नोट कर लो, क्लास में जाके नोट करके लाओ, और फिर आधे घंटे में जैसे मौका लगे बीच में निकाल के पढ़ लिया, फिर मौका मिला फिर निकाल के पढ़ लिया, एक लाइन पढ़ो दो लाइन पढ़ो फिर वैसा बनो, मन चिंतन मंथन करते रहो, सारा दिन ये टेंशन रहे। ठीक है, बहुत काम है, कितना काम है, अनकॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड ना, कॉन्शियस माइंड भी अच्छा नहीं है ना, तो उस सबको ठीक करना है ना, तो इतना काम है, तो सारा दिन लगन लगी रहे, तो अटेंशन सारा दिन अटेंशन रहे, कम से कम 21 बार जरूर मुरली के पॉइंट बीच बीच में रिवाइज करने चाहिए। कितनी बार? 21 बार, सारी मुरली नहीं कह रहा, एक एक पॉइंट, वरदान स्लोगन बीच में कोई लाइन, मीठे बच्चे, पापा ने क्या कहा, मैं ऐसा बन रहा हूं कि नहीं बन रहा, बन रहे कि नहीं बन रहे, फिर सोने के पहले लेटर लिखो पापा को, बाबा मैं 4 बजे से 10 बजे तक मेरा इतना इतना, 9:30 बजे लेटर लिखना शुरू करो, मीठे बाबा आज मेरे से गलती हो गई, मैंने वहां गुस्सा कर लिया, वहां मेरे से जल्दीबाजी हो गई, वहां मैंने उसको ऐसा बोल दिया, वहां मुझे ये बात की फीलिंग आ गई, वहां मेरी मर्यादा कम हो गई, वहां मेरे को दिल किया चाय पी लूं, है ना, नहीं पीनी थी फिर भी पी ली मैंने, जो मतलब जो भी गलती हुई आपको उसको चेक कर लो, ठीक है, इस तरह से आप करो, और फिर चार्ट भरो, याद का चार्ट भरो, फिर मुरली के पॉइंट रिवाइज करो 5-10 पॉइंट, फिर उसके बाद लेट बाबा को याद कर सो जाओ। तो अमृत वेला, मुरली, अटेंशन और चार्ट चेकिंग, ये चार बातें, पोता मेरे चार्ट चेकिंग, और चार मर्यादाएं हैं, पवित्रता, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क स्वपन तक भी पवित्रता, वैध संकल्प भी मत चलाओ, ये क्या हुआ क्यों हुआ कैसे, जितनी पवित्रता बढ़ेगी उतना अमृत वेला अच्छा होगा, मुरली अच्छे अंदर दिमाग में बैठेगी, उतना अच्छी अटेंशन रहेगी, उतना अच्छा सच्चाई से लेटर लिख पाओगे। ठीक है, दूसरी बात, शुद्ध सात्विक भोजन, बाबा की याद में भोजन बनाओ, बाबा की याद में खाओ, पराठा पकौड़ा समोसा खाना बंद कर दो, ये जो खाते हैं आलस, इससे आलस आता है, बैठते योग करने झटके खाने शुरू होते हैं, है ना, मुरली सुनते हो कहीं और बुद्धि जाती है, रासिक भोजन है वो, साथ में रोटी सब्जी फल सलाद दूध, है ना, ये लो चबा चबा के खाओ, आसक्ति में मत खाओ, स्वाद लगे मत खाओ। आपकी गाड़ी स्वाद लेके पेट्रोल खाती है क्या? स्वाद लेके पेट्रोल खाए तो कहते गाड़ी खराब होगी, चलो इसको बाहर निकालो, है ना, ठीक है। तो अटेंशन, शुद्ध सात्विक भोजन, सत्संग, बाबा और मुरली का संग, किसी और चीज का संग, कोई अखबार पढ़ना, टीवी देखना, ये देखना, वो देखना, ये मैगजीन पढ़ना, रामदेव का देखना, उसका श्यामदेव का देखना, ये सब मुद्रा लगा के बैठना, ऐसे मुद्रा लगा के रोटी बना, रोटी बना सकते, कई लोग ऐसे मुद्रा लगा के बैठते हैं, कैसे बैठते हैं मुझे पता नहीं है, अच्छा ऐसे करके बैठते हैं, ऐसे कर मुरली ऐसे बैठ के सुनेंगे, बाबा को ऐसे याद करेंगे, तो मतलब जब मुद्रा लगा के तो योग लगेगा, मुद्रा नहीं होगी तो योग नहीं लगेगा, ऐसे किसको तो योग मुद्रा बोलते हैं, ज्ञान युद्ध मुद्रा, ये सब क्या है, बाबा ने कब बताया, बताई कभी, कभी नहीं बताई, जो बाबा ने नहीं किया वो आप क्यों करते हो, कोई प्राणायाम करते हैं, कोई शवासन करते हैं, कोई सूर्य नमस्कार करते हैं, ये क्या करते हैं, बाबा के बच्चे ऐसे काम करते हैं, बाबा ने कब कहा करो, शरीर में बीमारी है तो बाबा की याद से ठीक करो ना, फिर बाबा टचिंग करके बच्चे उस डॉक्टर के पास चले जाओ, तुम्हारा उसे हिसाब किताब पूरा करके आ जाओ, ठीक हो जाओगे, है ना, समझे, बाबा की श्रीमत पे कदम कदम चलना, ये है मर्यादा, लोगों की बताई मर्यादाओं पे नहीं, लोग मनुष्य मत पर नहीं, मनुष्य मत आसुरी मत है किसी की भी, सत्संग सत्य का संग करो, और दैवी गुणों की धारणा, जरा भी गुस्सा चिंता कुछ भी ऐसी बात आए मत करो, दैवी गुण, सरलता रखो, नम्रता रखो, धैर्यता रखो, मीठा बोलो, कोई सामने वाला गाली दे रहा तो भी मधुरता रखो, संतुष्ट रहो, सहन कर लो, ठंडे सहन करके ठंडे रहो, माताएं सहन करती है गर्म हो जाती है, अंदर अंदर गर्म होती रहती है, सहन शक्ति नहीं, सहनशीलता, सहन करके ठंडे पवित्र रहना, ये नहीं इसने मेरे को बहुत तंग किया है, मैंने बहुत सहा है, ऐसे बोलो भी नहीं सोचो भी नहीं, राइट, तो ऐसा जब करेंगे, दृढ़ता, नियमों में दृढ़ता, दृढ़ता मर्यादाओं में दृढ़ता, तो ये चार मर्यादा जितनी बढ़ाओगे उतना अमृत लगेगा, उतना पावर, उतना विक्रम विनाश होगा, उतना मुरली अंदर बैठेगी, उतना फिर अटेंशन रहेगी, उतना फिर सच्चाई से लेटर लिख पाओगे, ठीक है, ओम शांति, तब मन जीते जगत जीत बनेंगे, है ना, तब एक 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 जन्म का पहले सबकॉन्शियस माइंड खत्म होगा, फिर अनकॉन्शियस जन्म बाई जन्म खत्म होता जाएगा, धीरे धीरे 21 जन्म पे पहुंच जाओगे, एकदम फरिश्ता बन जाओगे, है ना, टोटल मन पे से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, फरिश्ता बन के देवता बन के बाबा के साथ, फरिश्ता बन के घर जाएंगे फिर वापस आएंगे। चलिए, ये टॉपिक बहुत लंबा है पता है।